सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पूर्णिमा दाते आप सभी को नमस्कार करते हुए लॉकडाउन के पश्चात आने वाली स्थिति में कोरोना वायरस से सामना करने और अपने जीवन को सहज रूप से बिताने के बारे में कुछ बातों पर चर्चा करना चाहती हूँ। भारत सहित सारा संसार इस समय कोरोना वायरस के आतंक से पीड़ित है। हमें 50 दिन लॉकडाउन में गुजारते हुए हो चुके हैं। धीरे धीरे शासन लॉकडाउन में ढील दे रहा है और यह थोड़े दिनों में समाप्त भी हो जाएगा, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं होगा। आपको यह ध्यान दिलाना चाहती हूँ, पिछले कुछ वर्षों से प्रत्येक ऋतु परिवर्तन के समय कोई ना कोई रोग वायरस या बैक्टीरिया के रूप में सारे संसार को अपनी चपेट में लेता रहता है। कोरोना के पूर्व भी आपने कभी डेंगू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सार्स आदि के नाम सुने ही होंगे। कुछ वर्षों पहले तो अधिकांश रोग वर्षा शुरू होने के बाद शुरू होते थे और धीरे धीरे वर्षा की समाप्ति तक समाप्त भी हो जाते थे, लेकिन इस वर्ष आपने देखा होगा जनवरी में से ही इस कोरोना वायरस का आतंक शुरू हुआ है और अभी भी लगभग प्रति माह वर्षा भी हो रही है और कोरोना वायरस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यद्यपि जनवरी में कोई भी कफ से संबंधित रोग हमेशा ही होते रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि जनवरी में अर्थात वसंत ऋतु में हमारे शरीर का कफ पतला होकर धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलता है। यदि कफ शरीर में जमा है तो यह बाहर निकलेगा और इसकी प्रक्रिया से होकर हमें गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन जब फेफड़ों में अधिक कफ जमा हो जाता है तो कोरोना जैसे वायरस हमारे शरीर पर, हमारे श्वास नली और फेफड़ों पर अधिक हमला कर सकते हैं। यह हमें ध्यान रखना होगा और सुरक्षा के उपायों के अंतर्गत हमें अपने फेफड़ों को स्वच्छ रखना होगा। ध्यान यही रखना होगा कि वह अंग जिस पर सबसे अधिक प्रभावी होता है उसे साफ रखें। तो मैं आपको कुछ सुरक्षा के उपाय बताना चाहती हूँ। पहला तो यह है कि अपनी श्वास नली एवं फेफड़ों को शुद्ध रखते हुए प्रतिदिन नेति, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार आदि अवश्य किया करें। बार बार हाथ धोया करें। हाथ पोछने के कपड़े प्रातः एवं सायंकाल धुले हुए और सूखे ही लिया करें। नोटों, रुमाल, अन्य कपड़ों के आदान प्रदान से स्वयं को बचाने का प्रयास करें। घर से बाहर कहीं भी किसी वस्तु, रेलिंग, दीवार या अन्य किसी को छूने का विचार ना करें। इस बात की हमेशा सुरक्षा रखें। जब अपने कपड़ों को धोते हैं तो सबसे अंतिम पानी में नीम पाउडर या नीम का रस मिला दिया करें। स्नान करके प्रतिदिन धुले ही कपड़े पहना करें। अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने हेतु कपूर, देसी गाय का शुद्ध घी, देसी गाय का गोबर के कंडे जलाकर थोड़ा सा धुआं करके प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल अपने घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध कर लिया करें। एक यह भी उपाय है कि प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र किया करें। हाँ, स्नान करते समय पलाश के फूलों का रस, नीम की पत्तियों का रस पानी में मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। किसी भी बाजार के केमिकल युक्त सैनिटाइजर से अच्छा है कि नीम की पत्ती या पलाश के फूलों का रस मिला हुआ जल हाथ धोने और स्नान के लिए उपयोग करें। साबुन के स्थान पर देसी गाय के गोबर के कंडे जलाकर बनाई गई राख का उपयोग करें। प्रदूषण युक्त पानी और हवा से बचें। तेज धूप से आकर एकदम ठंडे में पानी पीना, बहुत ठंडा पानी पीना या सिर या शरीर को धोना, कूलर या एसी या पंखे के सामने बैठना बिल्कुल उचित नहीं। प्रतिवर्ष चातुर्मास में कम से कम प्रयास करें। चातुर्मास अर्थात हम जब मानसून हमारे यहाँ आता है तो मानसून शुरू होने से आगे ठंड आने तक चातुर्मास कहलाता है। रात्रि जागरण कभी ना करें। सुबह प्रातः सूर्योदय या उससे पूर्व उठ जाएं। कुछ अपथ्य आपको बताती हूँ। इसके अंतर्गत मिल्क चॉकलेट, मावा, बेकरी वाले पदार्थ, तले हुए पदार्थ, दही, बासी छाछ, कैरी, खट्टे या कच्चे फल, बासी भोजन, करौंदा, सिंघाड़ा, उड़द दाल, अलसी का तेल, चावल, हरी सेम, सेब, अंगूर, आलू, कच्चा मूली का साग, आइसक्रीम, बर्फ या फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक आदि ना पिएं। यदि आपको सर्दी जुकाम हो ही जाता है तो कुछ उपचार के भी उपाय आपको बता रही हूँ। यदि सर्दी जुकाम, आँखों में खुजली, धूल की एलर्जी, गला दर्द हो जाए तो उसे रोकने या दबाने की औषधि ना लें। आप एक काढ़ा पी सकते हैं जिसकी विधि मैं बता रही हूँ। ध्यान से सुने। 20 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम बड़ी इलायची, 10 ग्राम दालचीनी, 9 छोटी पिपली, इन सबको चूर्ण बनाकर एक डब्बे में भर लें। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1 कप काढ़ा बनाने के लिए इसमें से लगभग चौथाई चम्मच का उपयोग करना होगा। इसे पानी में डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें और चाय की तरह उबाल कर पी लें। इस प्रकार बनाया गया काढ़ा लगभग 20 लोगों के उपयोग का होता है। ग्रीष्म ऋतु तथा सितंबर अक्टूबर अर्थात पित्त बढ़ने की जो शरद ऋतु होती है, इसमें इस काढ़े में 9 छोटी इलायची और 10 ग्राम मुलेठी भी मिला लेनी चाहिए। काढ़ा बनाने हेतु उपरोक्त मिश्रण अधिक उबालने की आवश्यकता नहीं है। इस काढ़े को दिन में 6-7 बार भी ले सकते हैं। यदि बुखार हो तो इसे गर्म पानी पीकर ओढ़ कर सो जाएं। यदि गाढ़ा कफ या सूखी खांसी है तो आपको ग्वारपाठा का रस भी लेना चाहिए। ग्वारपाठे का रस लगभग 2 चम्मच गूदा दोनों समय खाली पेट सेवन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और उपाय है पिपली चटनी का सेवन। पिपली चटनी बनाने की विधि भी मैं आपको बताती हूँ। पिपली चटनी बनाने हेतु 5 ग्राम छोटी पिपली का चूर्ण, 5 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण, 50 ग्राम मुलेठी चूर्ण, 200 ग्राम शहद, यह सब मिलाकर अच्छी तरह घोंट लें। जब भी आपको लेना है तो चौथाई चम्मच यह चटनी दिन में 4-5 बार भी ले सकते हैं। रात को सूखी खांसी परेशान करे तो भी इसे ले सकते हैं। आपको कुछ लाभकारी कफनाशक पदार्थों के बारे में बताती हूँ। ये हैं काली मिर्च, अजवाइन, काला जीरा, सफ़ेद जीरा, हींग, बहेड़ा, हल्दी, प्याज, कपूर, जायफल, जावित्री, लौंग, लहसुन, लिसोड़ा, बड़ी या छोटी इलायची, तेजपत्ता, पुदीना, पान, अश्वगंधा, पका हुआ खीरा, सहजन, कत्था, जौ, मूंग, मोठ, ज्वार, अरहर, पालक, सरसों का तेल, शहद, ईसबगोल, ककोड़ा, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, वायविरंग, मूली, यह सब कफनाशक पदार्थ हैं। इनका सेवन कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वनस्पतियां, जैसे मैंने आपको अभी बताया ग्वारपाठे का सेवन कर सकते हैं, उसी तरह कुछ और वनस्पतियों के बारे में आपको बताती हूँ। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 15 ग्राम गिलोय का तना, जिसकी मोटाई अपनी छोटी अंगुली के बराबर हो, पीस कर रस निकाल कर अवश्य सेवन करना चाहिए। इस हेतु अपने गांव एवं शहर में भरपूर गिलोय की बेलों का रोपण भी करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि जितना हम प्रकृति से उपभोग करते हैं उतना प्रकृति को लौटाना भी आवश्यक है। आप सभी को अपने घर में एक अड़ूसा का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। आप गूगल पर देख सकते हैं अड़ूसा कैसा होता है। कहीं नर्सरी में भी शायद आपको अड़ूसा मिल सकता है। उसे हाड़ा बांस भी कहते हैं राजस्थान की भाषा में। वर्तमान में यह राजस्थान, गुजरात और चंबल के कुछ इलाकों में बहुतायत में पाया जाता है। गले में कफ होने पर प्रतिदिन कम से कम 5 अड़ूसा की पत्तियों का सेवन शहद मिलाकर करना चाहिए। प्रत्येक परिवार के घर के आसपास कम से कम 10 तुलसी के पौधे अवश्य होने चाहिए। कफ होने पर मुट्ठी भर तुलसी के पत्तियों को पीसकर गोली बनाकर शहद के साथ उसका सेवन करें। यदि गले में कफ चिपका हुआ हो तो आपको पहले बताया गया अनुसार बारपाठे के पत्ते का गूदा सेवन करना चाहिए। कोरोना के बाद की स्थिति में हमारे सामाजिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आपको इन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। खुले हुए स्थानों पर मलमूत्र त्याग अथवा थूकना नहीं चाहिए। यह ना भूलें कि आगे भी हमें कोरोना के साथ जीना है, इसलिए जन्मदिन, वर्षगांठ आदि पार्टियों में अब सोशल डिस्टेंसिंग तो करना ही होगा, किंतु उसमें परोसे जाने वाले पदार्थ, आइसक्रीम, केक, मदिरा, सामिश अर्थात नॉनवेज भोजन या रात्रि में दही से युक्त पदार्थ, इन सब को आपको अपने कार्यक्रमों में अपथ्य समझकर छोड़ना होगा। यदि आपको सर्दी जुकाम हुआ है, तब आपको अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। सर्दी जुकाम होने पर अपने साथ टिश्यू पेपर का रोल अवश्य रखें। स्वयं की सबसे दूरी बनाए रखें। जब भी नाक बहती हो या कफ निकलता हो तो टिश्यू पेपर से ही नाक पोंछें और तुरंत उसे डस्टबिन में फेंक दें। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ रूप से अवश्य बिता सकेंगे। धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर कोरोना के प्रति सुरक्षात्मक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। फिर यह कोरोना अन्य रोगों की तरह ही इस संसार में रहेगा, पर इतनी गंभीर स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए जब तक ऐसा नहीं हो जाता, तब तक इस सुरक्षा को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आगामी जीवन बहुत अच्छा और सफल रहे। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।